21st of October, in 2004, my lecture in headquarters Jamaat Khana at night. Yali Madad, आपसे माफी मांगता हूँ, आधा घंटा लेट हुआ। मेरी वॉइस थी लंबी हो गई, 100 मिनट वॉइस चली, फिर आके जरा चाय पी क्योंकि इंजन में पेट्रोल खत्म हो गया था। आपसे मिलकर खुश हुआ। आपकी तलब देख के खुशी होती है। इल्म की तलब बहुत बड़ी चीज है। इल्म खुदा का नूर है, जैसे अक्ल इंटेलिजेंस जो है ना, वो खुदा का नूर है। और इल्म को खुदा ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि आलिम आदमी की इंक पॉट में जो इंक है उसका दर्जा मार्टियर की खून से ऊंचा है। जो शहीद हैं वो जान देते हैं, खून बहता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि इनके खून से भी आलिम आदमी की जो इंक है इंक पॉट में उसका दर्जा ऊंचा है। नबी फरमाया कि 1000 इबादत करने वालों से एक आलिम ऊंचा है, इल्म का बड़ा दर्जा है। और तमाम इस्लाम के अंदर इस्माइलियों ने जो इल्म का काम किया है वो किसी और फिरके ने नहीं किया। सुनियों की तादाद ज्यादा है, सुन्नी तकरीबन 66% है, 2/3 है, लेकिन बाकी के जो लगभग 30% शिया हैं, इन शियों ने जो इल्म का काम किया है वो सुनियों ने नहीं किया। और शियों में कौन है? हम इस्माइली। आलिमूत में जब हमारी लाइब्रेरी को जलाया गया, 6 लाख किताबें थी लाइब्रेरी में, आलिमूत की लाइब्रेरी में 6 लाख किताबें थी, और वो जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। इंशाल्लाह आज मैं इस्माइली मजहब की एक और एस्पेक्ट को आपके सामने जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला का एक फरमान है, वमा खलकतुल जिन्ना इल्ला लियाबुदून। मैंने नहीं बनाया जिन्नों और इंसानों को सिवाय इसके कि मेरी इबादत करें। मौलाना आज़र इमाम पर सलवात पढ़ो। अरबी जबान में इबादत कहते हैं नौकरी को, खिदमत को। हम जब सेठ के लिए कुछ करते हैं तो नौकर तो तनख्वाह लेता है, लेकिन जो गुलाम होता है वो तनख्वाह नहीं लेता। नौकर जब चाहे छोड़ के चला जा सकता है, लेकिन गुलाम कभी छोड़ के जा नहीं सकता। और पीर हसन कबीरदीन ने अनंत खाड़े में कहा है कि मैं तेरा गुलाम हूं। गुलाम की सारी जिंदगी खिदमत में परोई हुई है। हमारे इस्माइली मजहब की एक साइड ये है कि खिदमत करना हमारे लहू में है, हर हालत में हम खिदमत करेंगे। اور خدمت امام کی محبت میں ہوتی ہے. جماعت خانے کو ہم لوگ صاف رکھتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ یہاں صفائی کمیٹی ہے کہ نہیں جماعت خانوں میں, ہے نا. 1400 سال پہلے رسول اکرم نے صفائی کمیٹی بنائی تھی, اور اس وقت اس میں عورتیں مسجد کو صاف کرنے کے لیے آتی تھی. میں نے آج ہی ایک واعظ میں ذکر کیا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کی جو ماں تھیں وہ اپنے دوپٹے سے اپنی پچھیڑی سے جماعت خانہ صاف کرتی تھیں, اور مولا نے منع کیا تھا کہ اس کو دھونا نہیں. تو 10 مہینے تک انہوں نے اس پچھیڑی سے, دوپٹے سے واڑی کا جماعت خانہ صاف کیا, اور تب جا کے سلطان محمد شاہ کی پیدائش ہوئی. خدمت ایک بڑی چیز ہے. جماعت خانے کے اندر اگر کچھ ایسی خراب چیز پڑی ہوئی, مثال کے طور پر بچے بہت دفعہ کچھ ایسی پی پی وغیرہ کھا لیتے ہیں, ریپر پھینک دیتے ہیں, تو ریپر اٹھانا بھی خدمت میں ہے. مجھے یاد ہے 75-80 برس کا بوڑھا, بھرا ہوا بدن, پگڑی پہنی ہوئی کچھ کا ایک مکھی بومبے آیا, مہمانی رکھی. جب یہ دھنی آ کے بیٹھا, ادھر بیٹھا تھا رائٹ سائڈ پہ نزدیک, ہاتھ جوڑے, مکھی کیا ہے؟ خداوند تو راجی تھی ہیں تو کرو دیے, کچھی میں بولتا تھا, یعنی تو راضی ہوئے تو کیا دے وے. مکھی جب ہم راضی ہوتا ہے ہم اس کو خدمت دیتا ہے, سیوا دیتا ہے. خداوند تو بھلے راضی تھیے تو کرو دیے, مکھی ہم اس کو بڑی سیوا دے وے. خداوند تو جو راضی تھی یعنی بہت زیادہ تو خوشی ہوئے تو کیا دے وے. کہتے اس کو میں بہت بڑی خدمت دوں. تینوں دفعہ یہی چیز تھی کہ میں راضی ہوں تو خدمت دوں. اب وہ آدمی کہ جو مولا کی خدمت کرتا ہے اس کو یہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا مولا مجھ پہ راضی ہے کہ اس نے مجھے یہ خدمت دی. اگر وہ راضی نہ ہوتا تو ہاتھ نہ لگانے دیتا. اس میں ایک اور چیز ہے, کچھ بچے کھیل رہے ہیں, باپ آیا, ان تمام بچوں میں سے وہ اپنے بچے کو بلائے گا, اڈاج تو باپا گرو ہے, تھوڑا پانی کھانی آج, دوسرے بچوں کو نہیں بولے گا. یعنی امام جب خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی خدمت اس کو دیتا ہے جو اس کا بچہ ہے. مولا جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی خدمت دیتا ہے. پھر وہ خدمت چھوٹی بڑی کی بات ہی نہیں ہے. مولا کبھی بوٹ اتار کے بولے جا یہ رکھ کے آ, تو یہ بھی خدمت ہے. اور جو اس کو چاہنے والے ہیں ان کے دلوں کی حالت تو صرف وہی جانتا ہے. مولا خوش ہوتا ہے, اس کی خوشی سے نور کی بخشیشیں ملتی ہیں. امام کی خدمت کے لیے امام سلطان الشتا فرمایا کہ عبادت کرتے کرتے یا عبادت میں کبھی کوئی خامی رہ جاتی ہے, پوری نہیں ہوتی, تو خدمت کرتے ہو یہ خدمت تمہاری عبادت کی کمی کو پورا کرتی ہے. عبادت کرنی چاہیے, عبادت چھوڑ کے ہم خدمت کریں وہ خدمت منظور نہیں. عبادت ہمارے اوپر فرض ہے. اور خدمت بھی فرض ہے لیکن عبادت کا درجہ اونچا ہے. میں بیٹھا تھا نیروبی میں, مولا آئے, سب کی مہمانیاں ہو گئیں, تو آخر میں والنٹیئر کور نے مہمانی رکھی, تو والنٹیئر سب کھڑے ہوئے, ایک ایک کو دیکھا, دعا سیس دی. کیپٹن کہتے ہیں مولا ہمیں ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا ہم لوگ صبح 4 بجے پونے 4 بجے لوگوں کو اٹھانے جاتے ہیں, کچھ دور ہوتے ہیں کچھ نزدیک ہوتے ہیں, تو ہم صبح عبادت پہ بیٹھ نہیں سکتے. کوئی آدمی کبھی من میں یہ سوچ کے کہ چلو ہم مولا کو تھوڑا لوٹ لے ہیں, مگر یہ بڑا چالاک ہے, یہ لوٹا نہیں جاتا, آج اسی سے مانگ لو اور بات ہے. سوامی مارو چتور سجان ہے, چتور کہتے ہیں کلیور کو, سجان ہے, ہر چیز جانتا ہے. تو اس کے دل میں تھا کہ مولا کہہ دے گا کوئی بات نہیں, تم لوگوں کو اٹھاتے رہو اور میں تمہاری عبادت قبول کرتا ہوں. لیکن مولا فرمایا یہ تو برابر نہیں, ایسا کرو تم دو گروپ میں ہو جاؤ, ایک گروپ 4 بجے سے 4:30 بجے عبادت کرے اور دوسرا گروپ لوگوں کو اٹھانے جائے. تو جو اٹھانے جاتا ہے وہ گروپ 4:30 سے 5 بجے عبادت کرے, اور جو گروپ بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ کے جا کے لوگوں کو بلاؤ لیکن عبادت کرو. میں میسج دے رہا ہوں, والنٹیئرز کو میسج دے رہا ہوں کہ صبح کی عبادت فرض ہے, خدمت کا بہانہ کر کے عبادت میں سے چھوٹ نہیں سکتے, لیکن خدمت کرنے سے مولا بہت راضی ہوتا ہے. عبادت مشکل ہے, خدمت تھوڑی آسان ہے لیکن یہ بھی مشکل ہے. خدمت کے اندر ایک کچھ اور بھی ہے. یہاں کتنے والنٹیئرز ہیں؟ 200 ہیں. ہے کوئی ادھر مجھے جواب دے رہے؟ 100 کے قریب. ماشاءاللہ بہت جگہوں کے اوپر 450 کی جماعت نہیں, یہاں 450 والنٹیئر ہے. مبارک, بہت خوش ہوا. اے مومنوں, نبی کے زمانے سے والنٹیئرزم شروع ہوئی. وہ زمانے میں یونیفارمز نہیں تھی. یونیفارم اس لیے ہوتی ہے کہ پتہ لگے بھائی یہ والنٹیئر ہے, باقی یونیفارم ہو کے نہ ہو ہر اسماعیلی والنٹیئر ہے. ہر اسماعیلی, مولا نے اس کو پنجے بھائی بھی کہا ہے, یہ ہر اسماعیلی پنجے بھائی ہے. پنجے بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کا بھائی ہے کہ جو ان کی مدد کرے, سیوا کرے. مدینہ آئے جب ہی مکہ چھوڑ کے نبی کریم, تو جو کافر مشرکین تھے وہ بہت غصے ہوئے. انہوں نے پلان بنایا تھا کہ رسول اللہ کو مار ڈالو, لیکن رسول اللہ رات کو, جس رات کو انہوں نے پلان بنایا تھا, اس رات کو ایک اونٹ پہ بیٹھ کے سرکار چلے گئے اور جا کے 3-4 میل دور جا کے ایک چھوٹی سی گفا تھی, غار کیو میں جا کے ٹھہرے صبح ہونے تک. مشرک لوگ جب آئے مارنے کے لیے تو پلنگ کے اوپر تو مرتضی علی سوئے تھے, تو مرتضی علی کو دیکھ کے تو وہ ڈر گئے, اور مرتضی علی سے پنگا لینا ان کی طاقت نہیں تھی. क्या है, मोहम्मद किधर है, मुझे देख के गए थे तुम लोग, भाग गए। रसूलुल्लाह मदीना पहुंच गए, ये लोग बहुत गुस्से हुए। अबू सुफियान की, माविया के बाप की, यजीद के दादा की लीडरशिप के अंदर इन्होंने 1050 लड़वाइये लिए, लड़ने वाले मक्का से मदीना गए। नबी को पता लगा तो नबी करीम मदीना से बाहर निकले, 313 मोमन थे उस वक्त, मदीना में कुछ ज्यादा अपने इस्लाम का फैलावा न हो सका। इन 313 में दो लड़के थे 11, 12 साल के, इनके पास हथियार नहीं थे, तो ऊंट लंबा जानवर है, उसके अगले पांव की हड्डी लेके लड़ने के लिए गए ये लड़के। यानी कैसा जोश था, एक्साइटमेंट थी। 313 उधर 1050। अब इस लड़ाई के अंदर रसूल पाक की घरवालियां उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएं, शुलवार के पांचे ऊंचे करके हाथ में जग और जाम लेके जख्मियों को, प्यासों को इस लड़ाई में पानी पिलाती थी। कोई जख्म हो जाता था तो उसकी मलम पट्टी करती थी। 1400 साल पहले इस्लाम ने ये बुनियाद डाली, दूसरों की खिदमत करना, और इसमें दूसरों का मतलब मुसलमान मुसलमान की खिदमत करे। कैसा जोश था उस वक्त मुसलमानों में। उहद की लड़ाई हो रही है, अभी उहद की सेकंड लड़ाई है, ये पहली लड़ाई मुशरिक हार गए। मौला मुर्तज़ारी की तलवार और हजरत हमजा की तलवार, हमजा मौला मुर्तज़ारी के चाचा थे, बड़े बहादुर थे, इन दोनों ने मिलके 70 आदमी मारे, बाकी के भाग गए। दूसरे बरस ये लोग और बड़ी तैयारी करके 3000 सोल्जर लेके मदीने के ऊपर हमला किया, और बाहर बड़ा मैदान जो था उस वहां एक छोटा पहाड़ था, उसका नाम था उहद, तो ये लड़ाई उहद के नाम से मशहूर है। अब मैं आपको उहद ले जाता हूं, पहाड़ उहद का पीछे है और आगे मुसलमानों का लश्कर है, और सामने 3000 से ज्यादा काफरों का लश्कर है। इस लड़ाई के अंदर भी नबी की घरवालियां और मुसलमानों के दूसरे बुजुर्गों के लीडरों की घरवालियां मलम पट्टी और पानी वगैरह पिलाती थी। मैं आपको कहा ना उहद ले जाता हूं, तो आप इस वक्त उहद में हो। एक औरत पानी का जग लेके घूम रही है, आवाज आती है पानी, इन्हें अरबी में कहते हैं मा। इधर देखा, जग स्पिरिट, दौड़ी उधर, घुटने पे बैठ के पानी डाला और इसके इधर हाथ डाल के इसको थोड़ा ऊंचा किया, ये पानी पी ले। तो इसके नजदीक दूसरा एक मरने वाला जख्मी मुसलमान सोल्जर कहता है पानी। ये आदमी जिसको अभी वो पानी पिलाने जा रही है, उसने मुंह फिरा लिया, कहता है मां पहले उसको पिला। ये कहती है तू जल्दी से पी ले, मैं उसको पिलाती हूं। नहीं, उसके पहले मैं पी लूं। नहीं, आप उसको पिलाओ। चलो इसको लिटा दिया, उसके पास पहुंची, इसी तरह उसको उठाया, जाम पानी का लेके आई तो एक नजदीक में और मरने वाले के मुंह से आवाज आई, पानी। इसने भी मुंह फिरा लिया, कहते हम उसको पहले पिलाओ। भाई तू पी ले, कोई बात नहीं, नहीं। उसको पहले पिलाओ। इसको नीचे लिटाया, वहां तक पहुंची, वो मर चुका था, पानी पिए बगैर मर चुका था। फातिहा पढ़ी, वापस आई कि मैं इसको पानी पिलाऊं, ये भी मर चुका था। इधर भी फातिहा पढ़ी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वापस आई वो पहले के पास, वो भी मर चुका था। तीनों में से किसी ने पानी नहीं पिया, लेकिन अपने ऊपर दूसरे को प्रेफर किया, पहले उसको पिलाओ, खुद मर गए। क्या स्पिरिट थी है? ये इस्माइली स्पिरिट है कि मौत के वक्त भी हम दूसरे की खिदमत या मदद करते हैं। मैंने पहली दफा, आज से लगभग 30-35 वर्ष की बात है, पहली दफा जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी, मैं आधा घंटा तक खामोशी के साथ रोता रहा। रोने का मेरा मतलब यह था कि आंसू आ गए। क्या मोहब्बत है, क्या स्पिरिट है एक दूसरे के लिए अपने आप को ऊंचा नहीं समझना, लेकिन दूसरे को अपने पर प्रेफर करना। यह खिदमतगारी का एक उसूल है। खिदमत में पहला उसूल यही है कि दूसरे को अपने ऊपर प्रेफर समझो, पहले तो। ये इस्माइली स्पिरिट है। मैंने डलस में एक वाज में, पहले ही दिन मैंने वॉलंटियरिज्म के ऊपर उधर वाज की है, मैंने बॉम्बे का एक वाकया बयान किया, किसी वाज में जिक्र तो है। धनी माँ बाप मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दाता 45 अक्टूबर के अंदर बॉम्बे आ गए, 5 महीने ठहरे। मार्च की 10 को डायमंड जुबली हुई। 5 महीने सरकार हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जमातों में घूमे, सबको कहते रहे मेरी जुबली देखने जरूर आना। 1 लाख आदमी बाहर से आया, ईरान से आए, ताजिकिस्तान से, बदख्शान से, काबुल से, दूर दूर से लोग आए। मौला आ रहे हैं और बॉम्बे के दरखाना जमात खाना जो खड़क पे है, इधर पदरामनी कर रहे हैं। सरकार जब भी बंगले से, वहां का सिस्टम उस वक्त यह था, टेलीफोन तो आज आपके खीसे में है, उस वक्त ये चीज नहीं थी। मौला बंगले से निकले तो बंगले के बाहर एक वॉलंटियर खड़ा रहे, वो विसल बजावे, तो 1 माइल दूर दूसरा वॉलंटियर कॉर्नर पे खड़ा है, उसकी आवाज सुन के वो विसल बजावे, तो आगे दूसरा तीसरा वॉलंटियर विसल बजावे, फिर वो अगले विसल बजावे। यूं करते करते दरखाना जमात खाना खड़क पे है, और ये इधर रास्ता है, उसका नाम है भीमपुरा, और डुंगरी तक एक वॉलंटियर खड़ा है। उसने विसल सुनी, विसल बजाई। जब विसल बजी तो जो लोग आ रहे थे थोड़ा लेट हो गए, वो जल्दी से जल्दी भागना चाहा। बॉम्बे के इस जमात खाना को जिसने देखा है वो जल्दी से समझ जाएगा, जमात खाने के सामने कॉर्नर पे लकी रेस्टोरेंट है, और भीमपुरा के किनारे पे उस तरफ कुछ बाइयां बच्चों के साथ चली आ रही हैं। इतने में सरकार की रोल्स रॉयस नज़दीक आ गई और एक मोमना औरत बच्चा उठाया है, दो के तीन बच्चे हाथ से लगे हुए हैं, वो उधर से भागी। रोड क्रॉस करने के उसने सोचा नहीं कि गाड़ी आ रही है, घबराई हुई थी तो बच्चों को लेके भागी, मगर गाड़ी नजदीक आ गई थी तो एक वॉलंटियर ने उसको बाजू से पकड़ के ऐसा खींच के घसीटा। अब गाड़ी में पीछे सुल्तान मोहम्मद शाह ये देख रहे हैं कि उस औरत को बाजू से पकड़ के वॉलंटियर ने घसीटा, उसमें एक आध बच्चा कुछ गिर भी गया होगा। मौला ने हुक्म किया हेनरी को, हेनरी ड्राइवर का नाम था, स्टॉप। उसने ब्रेक लगाए, दरवाजा खोल के मौला बाहर निकल आए। जब ही बाहर निकले तो टेंशन हो गया, मौला को सैल्यूट किया, सब उसको कहते हैं यूनिफॉर्म उतार डालो अभी अभी। कांपने लगा, यूनिफॉर्म उतार डालो। भरे रास्ते में सैकड़ों हजारों आदमी, गैर इस्माइली भी, बटन खोल रहा है, टाई निकाल रहा है, पतलून निकाल डाली, नीचे तो पजामा हमेशा पहनते हैं, शर्ट में और पजामे के अंदर कांप रहा। सफरमाया हमारी गाड़ी खड़ी करो, लेकिन हमारे बच्चे को इस तरह घसीट के रोको मत। गाड़ी में बैठे जमात खाने आए, लाल लाल थे। कर्नल पीर मोहम्मद माधानी, मौला ने उसको बुलाया। अब ये सारा वाकया पहुंच गया ऊपर, मौला कहते हैं मैंने इसकी यूनिफॉर्म उतारी है, उसको डिसमिस करो। कर्नल वीर जी मैदानी घुटनों पे आ गया, खुदावन तो रहम नहीं है, माफ कर दे, रहम तो है ही। बुला उसको जमात खाने में, मौला के सामने खड़ा है। रो रहा है, मौला के पांव पड़ा। मौला फरमाया अच्छा माफ करता हूं, तुम वॉलंटियर हो, जमात को बिल्कुल दुख नहीं देना, बिल्कुल अपमान नहीं करना, हमारी गाड़ी रोको, लेकिन किसी मोमन का अपमान नहीं होना चाहिए, माफ किया। ए मोमिनो, मैं बहुत दफा वाजों में कहता हूं कि हम लोग मजहब पे चलते हैं लेकिन मजहब को समझते नहीं, इसलिए कि हमने मजहब की गहराई से ठंडे दिल से स्टडी नहीं की। हमारा मजहब फरिश्तों का मजहब है, हमारी स्वभाव, हमारी चाल चलगत, हमारे एक्शन, हमारी थिंकिंग, हमारी वे ऑफ लाइफ नबियों जैसी होनी चाहिए। गुस्सा, अभिमान, तुमाखी, हुपनी, ये हमारे मजहब की चीजें नहीं है। और इसमें खास तौर पर वॉलंटियर्स, वैंकूवर में मैं रोज दरखाने जाता हूं, 5-6 साल की बात है, मैं गाड़ी से उतर के गाड़ी ने लॉक की तो एक मर्सिडीज बेंज सामने आके पिछली तरफ यानी ऑपोजिट साइड में उसने इस तरह गाड़ी ली रखी कि गाड़ी टेढ़ी थी, और टेढ़ी होने की वजह से साथ वाला जो पार्किंग लॉट था उसमें दूसरी गाड़ी घुस नहीं सकती थी। एक वॉलंटियर था, उसने आके उसको कहा सेठ को, एक्सक्यूज मी प्लीज, कीप योर कार इन ए प्रॉपर वे। एक थप्पड़ मार दिया, चुप होके हाथ लगा के घसते घसते चला आया। मैं देख रहा था, रोके कहता है, मिशनरी बापा आपने देखा? मैंने बता, तूने बहुत अच्छा काम किया, थप्पड़ खाया, रिटेलिएट नहीं किया, कुछ कहा नहीं, चुपचाप चले आए, शाबाश। इमाम के रास्ते में अपमान सहन करना बहुत अच्छा है, ये मेडल है। इमाम के घर की खिदमत करते करते किसी ने गाली दे दी, तुम्हें मेडल मिला, लड्डू मिला। किसी ने थप्पड़ मार दिया, शुक्र करो कि मौला तुम्हारे ऊपर खुश हुआ, क्योंकि जमात में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन वॉलंटियर खिदमतगार वो ये सब दुख अपने मौला के लिए उठा लेता है, क्योंकि वो वॉलंटियर है, उसमें नरमास है। इमाम के घर की जो खिदमत है, दीनदारों, जो आदमी समझते हैं उन्हें पता है कि ये मोती हैं, छोटे से छोटी खिदमत भी बड़ा इवज देती है, और दीन के लिए, जमात के लिए, खास तौर पे जमात के लिए। जमात, सुल्तान मुहम्मद शाह फरमाते हैं, जमात मारो अंग छे, मेरा बदन जमात है। और जब भी जमात के अंदर कोई तकलीफ होती तो हज़रत इमाम को बदन में तकलीफ होती, बीमार हो जाता है, जख्म लगता है, जमात के लिए। एक दिन मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह आए हसनाबाद में मानिया लेने, कबूल करने के लिए, तो अंगूठा, ये राइट हैंड का अंगूठा बंधा हुआ था। हम सब ने देखा लेकिन हिम्मत ना हुई पूछने की कि क्या हुआ। लेकिन एक बूढ़ी भाई को हिम्मत आ गई, उसकी मेहमानी में गए तो कहती है, खुदावंद ये अंगूठे पे क्या हुआ? तो मैं अपने अंगूठा ऐसा हाथ बाहर निकाल के, जिस तरह टोपी नहीं पहना थे, इस तरह ऐसा खींच लिया। अभी अंगूठे को मैं खुद ऐसा करके देख रहा था, कोई जख्म लग गया तो नहीं है। उसने फिर अंगूठा टोपी पहना दी। सफर में हमको दुखता है लेकिन राज मालूम ना हो सका, अंगूठा दुखता है। दो तीन दिन के बाद पता लगा, इंडिया की जमात में सबसे मालदार आदमी था चीफ वजीर मोहम्मद राव जी, फिर सबजली की बहन का लड़का था, करोड़पति आदमी, जमात खाने आता था, 20 फुट लंबी रोल्स रॉयस में आता था, सिल्वर कलर की रोल्स रॉयस, चीफ वजीर मोहम्मद राव जी। फिर कुछ टाइम के बाद मौला ने उसको दीवान बनाया। जब ये डायमंड जुबली की तैयारियां होती थी तो जमात ने यह तय किया कि हर इस्माइली, चाहे एक दिन का बच्चा भी हो, वे वो आगा खान लीजियन का मेंबर बने, चार आना देवे। तो छोटी सी टिकट मिलती थी मेंबरशिप की, द आगा खान लीजियन बॉम्बे रिसीव्ड फॉर आनर्स मेंबरशिप। लाख डेढ़ लाख आदमियों में ये लगभग 30-35 हजार रुपए इसमें मेंबरशिप में से मिले, और 10-12 कैटेगरीज बनाई गई कि जिसको ए क्लास में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है, डी में जाना है, छोटे से छोटी क्लास चार आने की। हमको डायमंड जुबली के लिए 60 million rupees जमा करने थे। चीफ वजीर मोहम्मद राव जी मीटिंग में बोले कि तुम जमात से फाड़ा मत लो, सारा खर्चा मैं दूंगा। 60 लाख रुपया वो देने को तैयार हुआ, लेकिन कुछ मेंबर्स ने यह कहा कि फिर दूसरों को जमात को लाभ तो नहीं मिलेगा। मौला तक बात पहुंची, मौला ने भी कहा कि छोटे लोगों को भी इसमें भाग लेने दो। तो उसकी अर्जी लीजन कमेटी ने रद्द की, उसको कहा वजीर साहब छोटे आदमियों को भी इसमें हिस्सा लेना है। इसने बहुत कुछ समझाया, दलीलें हुई, डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, माना न गया, नाराज होकर उठ के चला गया। अभी जब वो नाराज होकर चीफ वजीर दीवान, ये अंगूठा है, वो अंगूठा इसलिए दुखता था कि वजीर नाराज हो गया, चीफ वजीर और कमेटी में झगड़ा हो गया, अंगूठा बांध लिया। मौला क्या हुआ, दुखता है, जख्म तो नहीं था। जबी जबी भी दो मुरीद आपस में लड़ते हैं, हालांकि दुनिया भाने, जाहिर भाने, हजर इमाम को खबर भी नहीं कि कौन है, लेकिन जब ये दो मोमन लड़ते हैं उसको वहां दुख होता है, उसके बदन को तकलीफ होती है, और ये तकलीफ हमारे गुनाहों को डबल बना देती है, हमारी नेकियां जल जाती हैं। जिसने भी जमात को दुख दिया मरा गया, और जिसने भी जमात की खिदमत की और जमात को खुश किया उसके पीछे तो फरिश्ते उसको सलाम करते हैं, इमाम राजी होता है, नूर की बख्शिशें मिलती हैं। मौलाना अली शाह महबूब के जमाने में एक महान व्यक्ति गुजर गए, वजीर इस्माइल गांग जी गुजर गए, जूनागढ़ वाले। अली शाह महबूब ने उसको उसके मरने के बाद पीर का दर्जा दिया। इसका बेटा जूनागढ़ के अंदर वारिस था। ये वारिस का एक 10-12 बरस का लड़का वजीर इस्माइल गांग जी का पोता 10-11 बरस की उम्र में मौला की जन्म खुशहाली का मौका आ रहा था, तो एक महीना पहले यंगस्टर्स मिलके तो बंटिंग बस बनाते थे, वाइट वॉश करते थे, जमात खाना सजाते थे। खुशहाली में 2 दिन बाकी है, यानी कल नहीं लेकिन परसों खुशहाली है, और आज ये लड़का ऊपर से सीढ़ी से गिर पड़ा, मर गया। वारिस का लड़का गुजर गया, वारिस को पता लगा, दौड़ के आया, लपेट लपाट के घर ले गए, और जो उधर लड़के काम करते थे उन सबको कहा बेटा किसी को बोलना नहीं। घर गया, किसी माँ को उसके 12 बरस बच्चे की लाश दिखाओ तो क्या हाल होगा। वारसियानी को कहता है देख ये खड़ा नहीं होगा, ये मर गया है, अगर जमात को पता लग गया तो खुशहाली खराब हो जाएगी। मौला की खुशहाली खराब हो जाएगी, एक आंसू भी मत बहाना, इमाम की खुशहाली खराब मत करना, जमात की खुशियों को खराब मत करना। मुंह बंद करके चुप रही, दोनों मां बाप लड़के की लाश घर में पड़ी। मौला की खुशहाली में खुले दिल से भाग लिया है, जाने कुछ हुआ भी नहीं। अच्छी तरह खुशहाली हुई। दूसरे दिन खुशहाली के वर्ष कहते हैं मुखी को, मेरा लड़का गुजर गया आगे छाटा दो। तब जाके जमात को पता लगा और वो वॉलंटियर जो काम करते थे उनके भी मुंह सिए हुए थे। ऐसे ऐसे महान जोधे, इमाम के घर की खिदमत करने वाले, इमाम के लिए जान देने वाले, कुर्बानी देने वाले हमारी जमात में बहुत दफा हुए हैं। हमारी जमात के अंदर ऐसे बहुत से दाखले हैं कि जमात की खातिर दुख उठाए हैं, उफ तक नहीं की। ये इबादत है, इबादत का दर्जा है खिदमत को। सेवा करने वाले जो होते हैं, मौला के आशिक होते हैं, वो पगड़ियां गुम हो जाती हैं, सिर पे जख्म लगते हैं, लेकिन उफ नहीं करते, इमाम के लिए सब उठा लेते हैं। इसका नाम मोहब्बत है। ऐसे तो कई दाखले हैं, क्या सुनाऊं आपको। किताबों की किताबें इस वक्त मेरे दिल में लड़ रही है कि मैं पहले निकलूं। वो कहती है नहीं, मैं मुझे पहले बोल। 12-11 साल का एक लड़का धो में बैठ के कच्छ से, नहीं 11-12 साल नहीं थे, 16-17 साल था, ज़ंज़िबार आया। ज़ंज़िबार उतरा, अकेला लड़का था, सख्त गरीब की औलाद था, फटे हुए कपड़े हैं, इधर आया है नौकरी करने के लिए। यह मैं बात कर रहा हूं आज से 100 वर्ष पहले की, 1905-07 की बात है। उस वक्त हमारी जमात में, ज़ंज़िबार में, एक बहादुर शेर नर था, वजीर मोहम्मद रेमू हेमानी, रहमतुल्ला हेमानी, मौला का वजीर था और सुल्तान का कस्टम ऑफिसर था। मुसलमान सुल्तान था, कस्टम ऑफिसर था। उसकी ईमानदारी, उसकी ऑनेस्टी, उसका मैनेजमेंट का जो क्लू था, सुल्तान बहुत खुश हुआ, उसको अपने सारे किंगडम का चीफ मिनिस्टर बनाया, कस्टम ऑफिसर। और वह इतना नेक और अच्छा आदमी था कि इसके घर में, सुल्तान के घर में आना जाना हुआ तो सुल्तान की जो वाइफ थी उसने कहा कि तू आज से मेरा भाई है, इधर हमेशा आया कर। तो उसके साथ खाना खाता था, मिलता था, ये उसका दबदबा था। ये 16-17 साल का लड़का उधर आया, कुछ नौकरी की होगी। एक दिन इसने चोरी की, लड़के ने चोरी की। सुल्तान का राज था, शरीयत का कानून था, रेड हैंडेड पकड़ा गया और कबूल भी किया, सजा किया कि इसका हाथ काट डाला, शरीयत में है, इसका हाथ कंधे से काट डाला। लड़के को पकड़ के ले गए, जेल में डाला और एक डेट मुकर्रर की गई कि फलाने दिन इसका हाथ काटा जाएगा। हो गई जमात में। मुखी कमड़िया जमात के ऑफिसर वारिस के घर गए, वारिस बापू इसको बचाओ, सुल्ताना तुम्हारी बहन है, इसको बचाओ, छोटी उम्र है, इस उम्र में हाथ कट गया तो जिंदगी कैसे गुजारेगा। ख्याल में पड़ा, मोमिनो ऐसे हमारे लीडर थे वो जमाने में। गया घर पे, गया सुल्ताना को कहता है तू मेरी बहन है? हाँ। तेरा काम पड़ा है? भैया बोल क्या बात है? कि ये बात है मगर मैं ये नहीं बचा सकती, ये किंगडम का कानून है, इस्लाम का कानून है। कहता है सुन, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपना हाथ कटवा डालूं, उसको छोड़ दो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास माल भी बहुत है, बैठे बैठे खाऊंगा, वो मासूम बच्चा मारा जाएगा, सारी जिंदगी कैसे गुजारेगा। तो सुल्तान को बोल कि उसके बदले मेरा हाथ काट डाले। अच्छा, सुल्तान को बात की, सुल्तान सोच में पड़ा, फिर कहने लगा हाँ इस्लाम के अंदर हम किसी का दुख अपने ऊपर ले सकते हैं। अच्छा, उसका हाथ काटेंगे। वारिस रहमतुल्लाह हेमानी का हाथ कटवाने की बात आ गई। ये हैं कौम के लीडर। जिस दिन हाथ काटना था, लड़के को लेके आई पुलिस, वारिस भी आया, सुल्तान अपने पूरी यूनिफॉर्म के अंदर आया, तख्त पे बैठा, सजा पड़ी गई, बुलाओ उसको। लड़का लाया गया, बड़ी कुहाड़ी लेके जल्लाद खड़ा है कि ये हाथ रखे और मैं उसकी कलाई काट डालूं। लेकिन रहमतुल्लाह हेमानी नाम के आदमी ने अपने आप को पेश किया है कि इस लड़के के बदले उसका हाथ काटा जाए, शरीयत का कानून उसको कबूल करता है। रहमतुल्लाह हेमानी को लाओ। वारिस रहमतुल्लाह हेमानी जब्बा पागड़ी पहनी हुई है, हजर इमाम का वजीर है, सुल्तान का वजीर है, उसने अपना हाथ रख दिया। उस वक्त जो देखने वाले थे उनके दिल हरकत बंद हो गई, हाथ रख दिया, लोग रो रहे थे। सुल्तान ने कहा इसकी इस कुर्बानी के बदले में मैं इसका सिर्फ खून निकाल के इसकी सजा को कबूल करता हूं। जल्लाद को हुक्म दिया कि इसकी पेशानी में कुछ छुरी मार के थोड़ा खून निकालो और इसको छोड़ दो। रहमतुल्लाह हेमानी की कलाई में छुरी मारी, खून निकला, चलो हाथ काटने के बदले सिर्फ खून बहा दिया और कबूल कर दिया। लेकिन दिनदारों क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत है, वजीर रहमतुल्लाह हेमानी हजर इमाम का वजीर है, करोड़पति उस जमाने के हिसाब से, उसने हाथ रख दिया इसको काट डालो एक इस्माइली बच्चे को बचाने के लिए। ये है हमारी स्पिरिट। है कोई आज ऐसा लीडर हमारी कौम में कि जमात की खातिर अपनी कुर्बानी दे सके? यह लीडरशिप है, यह वॉलंटियरिज्म है। बॉम्बे का दरखाना, चीफ मुखी हसन भाई लाल जी देवराज, सारी जमात चली गई, कमरिया चला गया, मेहमानी नादी वगैरह के थाम बासन गाड़ी में आ गए, मुखियानी जाके गाड़ी में बैठ गई, ड्राइवर बाहर खड़ा है, हेफ्टी बॉडी थी, आहिस्ता आहिस्ता पगड़ी पहनी हुई है, मुखी हसन लाल जी देवराज नीचे उतरे, ड्राइवर ने दरवाजा खोला, खड़ा है मुखी ऐसा नीचे झुके अंदर जाने के लिए, किसी ने छुरी मारी, मुखी हसन लाल जी गिर गए, हो गई खोजे मोहल्ले में, मुखी को छुरी मारी, मुखी को छुरी मारी, वो भागा जरूर मगर लोगों ने उसको पकड़ लिया, मुखी बेहोश हो गया, उठा के हॉस्पिटल ले गए। रातों रात मौला को टेलीग्राम किया गया कि खुदावंद चीफ मुखी को, दरखाना मुखी को किसी ने छुरी मारी। मौला ने दुआ शीश भेजी। 3 दिन के बाद आंखें खोली, इनका बड़ा बेटा था मेदी, जो बाद में कुछ अरसे के बाद दरखाने का मुखी बना, मेदी मुखी, हसन लाल जी का लड़का। आंखें खोली, मेदी जी बापा, ये मरने वालों के रो के बापा पूछ मारू हुआ क्या था? कुछ टाइम पहले एक 6 फुट का एक मैकेनिक टाइप का आदमी अपने साथ किसी और को ले आया, दफ्तर खाने में जाके कमरिया को कहा कि मेरी लड़की की सगाई करनी है, आओ मुबारक, 5.25 रुपए दिए, नाम लिखा गया, लड़के का नाम लिखा गया, मुबारक मुबारक हुई। कांवड़िया दफ्तरी जो था उसने पूछा कि भाई लड़की की उम्र क्या है? 16 साल। उसका हमें सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, लेके आऊंगा। अब उस वक्त इंडिया की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था कि किसी भी हालत में 16 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। इसको कहते थे शारदा एक्ट, क्योंकि वहां 10-12 बरस की लड़कियों की शादी करके उसको पैसे ले लेते थे, बेच डालते थे। गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, 16 साल से कम लड़की की शादी सगाई नहीं हो सकती, सगाई हो जाती है बस तो काले खनी भले, कल गया, परसों गया, तरसों गया, सर्टिफिकेट नहीं आया। 15-20 दिन हुए तो लड़की और लड़के दोनों उनके बाप वापस आए कि शादी करनी है। खुशी हुए, मुखी साहब ने दुआ दी, तारीख नक्की हुई। दफ्तरी कहते हैं मुखी साहब इन जो सर्टिफिकेट नहीं आयो, हाँ देखो भाई देखो, हाजिर इमाम के जमात है, गवर्नमेंट का एक्ट है, सर्टिफिकेट नहीं आएगा हम शादी नहीं करेंगे। ना ना खड़ी अशनों से मुखी साहब डेट आ गई, सर्टिफिकेट नहीं आया, लड़की 14 साल की थी, सर्टिफिकेट कहां से लाए? शादी की तारीख आ गई, मुखी ने मना किया नहीं, पर शादी का प्रसंग है मुखी साहब, सर्टिफिकेट चाहिए। मुखी उठ के चले गए, रात को मुखी को छुरी मारी। मेहदी जी बापा केर हुआ बापा उज मारू वो छोकरी जो बापा न मेहदी जी बापा गुलाम अली के चौ गुलाम अली मर्चेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और वकील थे, नामचीन वकील थे, पावरफुल आदमी थे, काउंसिल के सेक्रेटरी अकबर मर्चेंट वो भी वकील थे। गुलाम अली के चौ केटलोपन खर्चो थिए, इनके छुड़ायो, इनके सजा ना दियो। मुखी ने छुरी मारी, किसी के पैसे खर्च करता है उसको बचाने के लिए, है कोई आज ऐसा? हम लोग तो ये जो आलू है ना पोटैटोस के ऊपर धूड़ लगी है उसको साफ करते हैं, हम मजहब क्या पालेंगे? हमने मजहब को तो जाना ही नहीं। हमारे गुस्से, हमारी बड़ाई, हमारी होपनी, हमारे पैसा, हमारी ताकत, इसमें हम मस्त और खेल रहे हैं। मजहब की जो हकीकतें हैं वो हमारे गले से नीचे नहीं उतरी। सुख शांति दूसरे के लिए दुख उठा लेना राजी खुशी से, دوسرے کے ظلم کو برداشت کر کے معاف کر دینا، یہ کہاں ہے؟ میں 200-500 برس کی ہسٹری بیان نہیں کر رہا، یہ آج سے 60-70 برس پہلے کی بات ہے۔ مکھی کہتا ہے مہدی جی بپا، غلام علی کہچو کیٹلو پن خرچو تھی ہے ان کے بچائیو۔ اس کو کوئی ایسا فیکٹر نکالا مکھی نے، اس نے غلام علی وکیل اس کو 2 کے 3 مہینے کی سزا ملی، چھڑایا گیا۔ چھ سات مہینے کے بعد مولا آئے، سلطان محمد شاہ فخر کرے، اپنے مکھی پہ فخر کرے، جگہ جگہ مہمانیوں میں بولے دیکھو میرا مکھی چھری کھائی لیکن خونی کو خرج کر کے بچایا، کیونکہ وہ اسماعیلی ہے۔ ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے کہ ہمارے پرانے جو لیڈرز تھے انہوں نے کس طرح اپنی قربانیاں کی مگر جماعت کو دکھ نہیں ہونے دیا۔ اگر کسی نے بھول کی ہے تو معاف کر دیا۔ حسن لال جی دیوراج گزر گئے، ان کی جگہ جو نائب مکھی تھے قاسم علی منجی نتھو مکھی بنے۔ شکروار چاند رات کا دن تھا، بڑے خانے میں میں نے چھوٹی سی آواز کی، بعد میں ہم لوگ نیاز پینے کے لیے اٹھے، مکھی قاسم علی منجی نتھو کمریا صاحب ہم لوگ آئے ادھر۔ قاسم علی منجی نتھو نے اس کے تھوڑے دن پہلے ڈورے رسے لے کے باندھے کہ لوگ لائن میں جاویں، آگے کیا ہوتا تھا سب لوگ ایسا ساتھ مل کے آتے تھے، ایک دن 5-7 آدمی کٹ پاٹ کے پاس کے اوپر گر گئے۔ مکھی رسیاں لے کے آئے، والنٹیئر کو کھڑا کیا اور سب جماعت لائن میں جاوے۔ مکھی صاحب ہم لوگ نیاز پی کے ایک سائڈ میں کھڑے باتیں کرتے تھے تو ایک آدمی لائن توڑ کے کیوں توڑ کے رسی کے نیچے سے نکل کے جا کے نیاز پہ گیا، مکھی صاحب نے جا کے اس کو پکڑا، اس نے ایک تھپڑ مار دیا مکھی کو بھلے جماعت خانے کے اندر۔ قاسم علی منجی نتھو شارٹ قد تھا، پتلے تھے، چشمہ پہنتے تھے، اب جو تھپڑ مارا تو چشمہ ادھر گر گیا، والنٹیئرز نے اس کو پکڑ دیا، فوراً اٹھے اس کو چھوڑ دو، اس کو اس کے پاس جا کے کہتے ہیں دیکھیے تو اچھا نہیں کیا، سب لوگ نیاس پیتے ہیں، کوئی گالی نہیں دی مکھی نے، کوئی گالی نہیں دی، کوئی بد دعا نہیں دی، اتنا کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا تو نے، لائن توڑ کے تم ادھر چلے گئے، پاؤں پڑ گئے، میری آنکھ سے دیکھی ان باتوں۔ ہمارا مذہب پریم کا مذہب ہے، دشمن کو بھی معاف کر دینے کا مذہب ہے، بدلہ لینے کی بات ہمارے اسماعیلی مذہب میں نہیں ہے، چھوڑ دو اسے، جس نے بدی کی ہے وہ بدی کرتا ہے، جس نے نیکی کی ہے وہ نیکی کرتا ہے، بدی کے بدلے میں کوئی نیک آدمی نیکی چھوڑ کے بدی نہیں کرے گا۔ اچھے بنو، نیک بنو، ہمبل بنو، دکھ اٹھا لو، بدلہ مت لو، جماعت کی خدمت کرو، جماعت کو راضی کرو تو وہ دھنی راضی ہوگا۔ ہر حالت میں جماعت کا دھیان پہلے رکھو۔ لیڈرز لوگ جاتے ہیں امام کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کوئی بات آتی تو مولا یہ بولتے پوچھتے ہیں ہاؤ جماعت وڈ فیل، بھلا یہ کام کرو تو جماعت کو کیا لگے گا، ذرا بھی مولا کو ایسا لگے کہ جماعت کو پسند نہیں تو ماں باپ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. جماعت اس کو بڑی پیاری ہے. اب وہ لوگ کے جو والنٹیئر ہیں, بیج والے ہیں کہ نہیں ہیں, ہر اسماعیلی والنٹیئر ہے, اور ہر آدمی کے اوپر امام کے گھر کی خدمت کرنا فرض ہے. ہمارے مرض کے اندر عبادت کی طرح فرض ہے. مومنو, میرے مولا نے مجھے حکم کیا کہ تم میرا مشنری بننا. آمین. میں اس کا بڑا لونی ہوں, احسان مند ہوں, گریٹفل ہوں کہ اس نے مجھے قبول کیا. میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آئے ہیں. دکھ اٹھا لینا اچھا, لیکن جماعت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دار السلام سے معاوضہ گیا, دو دن اور دو راتیں لگتی ہیں ٹرین میں, رستے میں مجھے ملیریا ہو گیا. معاوضہ پہنچا مکھی کمریا, پلیٹ فارم پر آئے, ریلوے اسٹیشن پہ مجھے لیے, ہاتھ لگایا تو مکھی کہتے, مشنری صاحب آپ کو تو بخار ہے. میں نے کہا بخار ہو گیا اور سردی لگتی ہے. فوراً لے گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن دیا, دوا دی. تو کمریا کو کہا آج ہم وائس پوسٹ پون کریں. میں بولا نہ, انہوں نے پہلے سے سب پھرایا تھا, ابو علی مشنری آتے ہیں واز کریں گے. میں بولا نہ مشنری, پر آپ کو تو بخار ہے نا. میں بولا ہاں بخار تو ہے, لیکن جماعت آئی ہے مجھے سننے کے لیے, میں واز کروں گا. حیران ہو گئے. میں نے واز کی, میرا بخار اتر گیا. جماعت کو بہت پیار کرو, جماعت کی بڑی عزت کرو. جماعت حاضر امام کا بدن ہے, جماعت کی خدمت کرو, جماعت کو راضی رکھو. ایک دو کوئی ایسا آدمی نکل بھی آوے اس کو معاف کر دو. اسماعیلی مذہب کی یہ خوبی ہے. پھر کہتے ہیں پر اوگن دوش کھمی, شبد سنو پیر کے, پر اوگن دوش کھمی جے جیو گن کرے رے ویرا, تینر دام ہے جوت جویریاں, پر اب گن کھمی جے جیو گن کرے اس کے دل میں نور کی جوت جگتی ہے. ایسے کتنے ہی واقعات ہیں, میں صبح تک بھی بولتا رہوں آپ یوں ہی جم کے بیٹھے رہو گے. اپنے مولا کو بہت یاد کرو, ایک دوسرے کی سیوا کرو, ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ. مولا مرتضی علی ایک دن اپنے گھر کے اوٹے پہ ایسا کر کے بیٹھے ہیں, کوئی آدمی کے بڑے دکھ میں ہوئے نا تو اس طرح افسوس میں بیٹھ جاتا ہے. چار پانچ گھر دور ایک یہودی پڑوسی تھا, وہ جب ہی نکلا تو کہے یالی کیا بات ہے اس طرح سے بیٹھے ہو. کہتے آج تین چار دن ہوئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا, مہمان نہیں آیا, اس کے لیے اتنا افسوس. کیسے سے کوئی آدمی مر گیا اس کا افسوس کرتے ہیں. ہمارے مذہب کی یہ ریت ہے, ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ, رزق زیادہ ہوتا ہے. سخی بنو, کنجوس نہ بنو. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ فضول خرچ مت بنو, جہاں ضرورت نہیں وہاں پیسہ مت خرچو. حلال کی کمانی یہ ٹکٹوں میں اور لاٹریوں میں مت ڈالو, حلال کی کمانی جو ہے وہ شراب اور سگریٹ اور فین فتور میں مت ڈالو، وہ پیسہ حلال کا ہے کہ جس میں سے دسوند نکلی ہوئی ہے. اپنی کمانی کی بھی عزت کرو. لیکن ایک چابی دیتا ہوں کہ دنیا میں رزق اور اپنی آمدنی وغیرہ کا سٹیبلٹی چاہتے ہو، دسوند برابر دینا. ملینر شاید نہ بھی بنو لیکن سکھی ضرور ہو گئے، دسوند اس کا حق ہے. دسوند اللہ رسول کا حق ہے، دسوند ضرور دو. آدھی روٹی کھاؤ لیکن دسوند دینا. دسوند دینے سے دل میں نور پیدا ہوگا، دسوند دینے سے انٹیلیجنس کھلے گی، دسوند دینے سے وین لمبا بنے گا. کل پرسوں برس دو برس کی باتوں کا خیال سوچ سکو گے. دسوند دینے سے کانشنس جاگ اٹھتی ہے، دسوند دینے سے ایمان کے اوپر بھروسہ بڑھتا ہے، دسوند دینے سے اس کی دعا شیش ملتی ہے، تندرستی بڑھے گی. دسوند دینے سے گھر کے اندر کجیے کنکاس نہیں ہوں گے، سکھی اور آباد بنو گے. دسوند برابر دینا، جماعت کی سیوا کرنا، مالدار بننے کی اچھا کرو لیکن مالدار بننے کی کوشش مت کرنا. کیونکہ مالدار بننے کی جب ہم کوشش کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر 420 کا راستہ لینا پڑتا ہے. اس کو جو دینا ہوتا ہے تو ایک آنکھ کے پلک میں دے سکتا ہے. تمنا ضرور کرو، یا مولا مجھے برکت دے، مجھے اچھی زندگی دے، اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن اپنے مذہب کے اوپر چلو، نیک بنو، آنیسٹ بنو، سادہ بنو، ٹالرنٹ بنو، سہن کر لو. پر اوگن دوش کھمی جے جیو گن کرے تینا رضا مائے جوت جبہری. والنٹیئرزم کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ والنٹیئر جو ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے، ٹالرنٹ ہوتا ہے، سہن کر لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا. اس طرح اپنی زندگی کو گزارو، دین و دنیا میں آباد بنو، سکھی اور آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے گئے، دسوند سکوریت میں پورا رکھے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، بلایا فتح دور کرے، روزی رزق میں برکت دے، گھر میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے وے، تندرستی سے رکھے، عزت آبرو زیادہ کرے، اپنی خوشیاں زیادہ دے وے، اپنی رحمتیں دے وے، آپ کی مہربانیاں دے وے، اپنی شان میں اپنی پناہ میں رکھے. مولانا حضر امام، آپ کو آج میں اس وقت ساری دنیا کی جماعت کے لیے کہتا ہوں کہ یا مولا ہر ایک اسماعیلی کو، ہر ایک اسماعیلی کو، چاہے وہ کیسا بھی ہے، تیرے اوپر اس کا ایمان کم ہے یا زیادہ ہے، اے مولا تو ان سب کو دین و دنیا میں آباد کر. اے زندہ.